Hare Krishna के सभी भक्तों का स्वागत है आज के कक्षा में। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 रिपोर्ट पर लिखा है हमारे विषय द्वारा ये कौन वर्तते किल गुरो भगवन प्रयास तारणेस्य भव संभव लोप हेतो मूढ़ेषु वे महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनान् सेवतां न शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की एक बार सुने। हे भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं को उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों तथा मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर अनुवाद है कर्मा विषद। हे भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं, अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप सारी दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तात्पर्य यहां पर प्रिय जनानां अनुसेवतां न शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों का पक्ष लेते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान को भगवान के दासों के दास का दास बनना चाहिए। मनुष्य को यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो यह उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना। यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपी भरत पद कमल दास दासन दास बनने का मार्ग दिखलाते हैं। मनुष्य को भगवान का सीधा भक्त बनने में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उनकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह भक्ति में उतना ही पूर्ण बनता है। यह भगवत गीता का भी आदेश है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। केवल परंपरा प्रणाली द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, मुझे भगवान के भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्म जन्म है ए अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर जी का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्मांतर भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना हमोरे। हे भगवान, हे वैष्णव, हे भगवान, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता मान दे। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए क्योंकि वह बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति है अतएव यदि हम शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करें तो वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त करा सकते हैं। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दें, जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मद भक्त पूजा अध्यापिका भागवत के में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा करने सेवा में लगने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है वह यह है कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सभी पतित आत्माएं हैं, उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगें, जिससे हम सबों का उद्धार हो जाए। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रावधान करना कठिन नहीं है, और इस तरह प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया अश्रुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपां सागजातं सगनरघुनाथान्वितं कंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगन ललिता श्रीकृष्णकांताश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्णा प्रसिद्ध भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। इस स्कंद में सातवें स्कंद के नौवें अध्याय में श्रील प्रहलाद महाराज जो हैं नरसिंह देव जी के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रसंग आप पूरा जानते ही, और अब प्रार्थनाओं का जो है दौर चल रहा है और बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं, इनकी प्रार्थनाओं को प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ही जो हृदय में है या जो हमारी स्थिति है, प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे ढंग से उसको भगवान के आगे रख रहे हैं, मतलब हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले दो तीन श्लोकों में जो हम पढ़ रहे थे हमने देखा कि बिल्कुल एक जैसा भक्त स्ट्रगलिंग जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है जब से और अपने इंद्रियों से अपने मन से, और प्रहलाद महाराज जिनका कि स्तर इतना उत्तम स्तर है, जिनकी भक्ति जिनकी शरणागति को देखकर भगवान स्वयं अवतरित हो गए खंभे से निकलकर उनकी रक्षा करने हेतु, उनके समर्पण के भाव को देखकर उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को देखकर, ऐसे भक्त भगवान के सामने आने के बाद अब उनकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थनाओं का जो स्तर है वो हर स्तर की प्रार्थनाएं हैं। एक शुद्ध भक्त को कैसे करनी चाहिए, एक स्ट्रगलिंग भक्त को कैसे, तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे में प्रहलाद महाराज। और प्रार्थनाओं को पढ़कर लगता है कोई ऐसे ना सोचे इन प्रार्थनाओं को पढ़कर के ओके मतलब प्रहलाद की जो स्थिति है मतलब हमारी भी स्थिति सेम बराबर ही है, ऐसा कोई विशेष नहीं है, है ना कि, लेकिन वो हम लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पूरे मानव जाति को। और अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि सबका उद्धार। और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान के आगे अपनी बातें रखी। हम जिन शब्दों का हम प्रयोग कई बार करते हैं, जिन एग्जांपल्स का हम प्रयोग करते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुवादों में, तो वो सब श्लोकों को आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कई बार जब हम लोग 7 डे सेशन कोर्स में भी माइंड कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार मन को नियंत्रित करना जरूरी है। लेकिन स्थिति क्या है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की एक नहीं 5-5 पत्नियां हों और सब उसको अपनी ओर खींचें तो उस पति की क्या हालत होगी। तो यहां पर प्रहलाद महाराज भी इससे पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि हे भगवान मेरी दशा उस पुरुष की भांति है। अब प्रहलाद महाराज की उम्र देखिए कितनी है, कितने छोटे से हैं। आपको ये बोले कि नहीं देखो छोटे से हैं, अब पुरुष और पति पत्नी कहां उनको कुछ पता होगा। 5 वर्ष की उम्र में वो इस प्रकार के उदाहरणों को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हों और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही। उदाहरण, जीव स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होता है तो उन्होंने अपने इंद्रियों को उन स्त्रियों को और मन को जो है एक वो सुंदर दृष्टांत के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। कह रहे हैं जैसे जीवा भी एक इंद्रिय है और वो अपनी ओर आकर्षित करती है मन को, है ना। जननेन्द्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने की और स्पर्श इंद्रियां मुलायम वस्तुओं का स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान अपने विषय में सुनकर सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकर्षित होता है। ज्ञानेन्द्रियां किसी अन्य ओर की ओर आकर्षित होती हैं। चंचल आंखें इंद्र दीप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती हैं और सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती रहती हैं। इस तरह मैं सचमुच दुविधा में रहता हूं। 5 साल की उम्र, संयमित व्यक्ति, बचपन से ही अच्छी एजुकेशन, मतलब वो बात अलग है कि वातावरण ठीक नहीं था, और इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रहे हैं। इससे क्या प्रदर्शित होता है कि इस प्रकार एक आचार्य जिन्हें इनको बोला जाता महाजन, तो 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज इसलिए महाजन है कि देखिए इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान को तो सामने अपनी रक्षा के लिए प्रकट कर दिया और किस प्रकार सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को भी भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। आज की विशेष प्रार्थना में तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे वो एक लास्ट प्रार्थना जो हमने कल पढ़ी, हे भगवान आप सदैव मृत्यु की नदी जो है उसकी दूसरी ओर दिव्य रूप में रहते हैं किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। दरअसल हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्त्रें खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, ना केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहित की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। एक भक्त जो उन्नत स्थिति में होता है तो कभी भी अपने विषय में नहीं सोचता पर दुखा दुखी, ये वैष्णव का एक बहुत सुंदर आचरण है कि वो दूसरों के दुखों को भी नहीं देख सकता। ये तो आजकल के अगर वातावरण में देखे तो लोगों को खुशी तब होती है जो व्यक्ति सामने वाला दुख हो, रिश्तेदारों में कोई परेशान है, दुखी है, किसी का बिजनेस कम हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो लोग एक अलग से अच्छी अनुभूति फील करते हैं। उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो कम हुए ना, कॉम्पिटिशन इतना है ना। हर व्यक्ति दूसरों के दुखों से सुखी है, लेकिन जिस अध्यात्म वातावरण में हम लोग हैं, ये पूरा का पूरा कल्चर अध्यात्म गोलोक वृंदावन धाम का है। इस संसार में होने वाली हर गतिविधि का उल्टा वहां होता है, या यूं कहें कि वहां जो होता है उसका उल्टा यहां होता है। वहां पर हर भक्त एक दूसरे भक्त को आगे बढ़ता देख प्रसन्न होता है, दूसरे को कष्ट में देखकर उसका हृदय दुखी होता है, वो दूसरों की सेवा करना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे प्रपंच में दास दासन और दास की बात को रखा कि एक वैष्णव अपने बारे में नहीं सोच रहा। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है संसार में देश में काम करने वाला, वो अध्यात्म से इसलिए चिड़ खाते हैं कि उनको लगता है कि जो ये अध्यात्मवादी है ये केवल आत्ममोक्ष की बात करते हैं। समझ पाए, जो लोग रजोगुण में हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो क्षत्रिय गुण के लोग हैं, ये लोग अध्यात्मवादी लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत सारे गौड़ी मठों की रचना करी, बहुत सारे वैष्णव बनाए, सन्यासी बनाए, ब्रह्मचारी बनाए, तो पॉलिटिकल लेना चाहते थे उनसे कि भाई सबको फौज इकट्ठी किए, तुमने इसको लगाओ ना हमारे साथ देश की आजादी में। तो कहते थे कहां ये लोग बेचारे सर मुंडा के बैठे हैं, तो वैसे ठंड लगती है, जुकाम लगा रहता है, पीरा गिर जाना होता है, ये कहां आप देश की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग इस स्तर पर है, उस स्तर से उस अध्यात्मवादी को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी भी जब युवावस्था में थे तो वो भी ऐसे लोगों के संग की वजह से वो भी आकर्षित थे कि देश के विषय में कुछ करना चाहिए। महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित रहा करते थे, लेकिन वो प्रभाव खत्म हो गया जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के प्रभाव में आए और उनसे एक निर्देश प्राप्त हुआ कि तुम्हें तो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने तय कर दिया कि भाई गुलाम देश है, 1922 की बात है, गुलाम देश में अगर मैं किसी को कुछ बताने जा रहा हूं कहां चलेगा, कि तुम्हारा देश तो गुलाम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि कृष्ण प्रचार के लिए, कृष्ण भक्ति को फैलाने के लिए, इस वैदिक ग्रंथों का जो है पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए, इसको कोई बाउंड्री की बाउंड्रीज को रोक नहीं सकती, ये किसी के बंधन से रोक नहीं सकता, इसमें तो फैलना है, इसलिए तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हो, जाओ पूरे विश्व में प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने शिष्य को बोल रहे हैं, खुद भी कर सकते थे, चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं आए वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, स्वयं भगवान, लेकिन नहीं, मौका दिया जाता है अपने आगे भक्तों को। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपने गुरु की वाणी का पालन करके, अगर वो चाहते तो कितना समय उन्होंने वृंदावन में भी गुजारा, दिल्ली जैसे क्षेत्र में उन्होंने बैक टू बैक मैगजीन्स का भी प्रचार किया और कितनी कितनी तकलीफें उनको उठानी पड़ी। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं या जो सकाम कर्मों में लगी जिनकी चेतना है, वो अध्यात्मवादियों को कभी पसंद नहीं करते। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा डरा के दिखा दे, हम लोग अध्यात्म में हैं, हम लोग जब देखते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने इस चीज का त्याग कर भक्ति में आया, तो भक्तों के समाज में उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, वाह कमाल कर दिया, क्या त्याग है, इसने अपनी कंपनी त्याग दी, इसने अपना घर त्याग दिया, इसने अपना युवा अवस्था में ये अपना जीवन भगवान की सेवा में दे रहा है, तो लोग बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। कौन लोग? भक्त लोग करते हैं। लेकिन जिनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है वो क्या करते हैं, हाँ मतलब इतनी चिंता में चला गया, कंपनी छोड़ दी, घर त्याग दिया, तो वो सहन नहीं कर सकते, उनको बहुत ज्यादा झटका लगता। अच्छा ऐसा है कि अपना कुछ नहीं गया होगा, बस ऐसा नहीं कि खुद के घर से भी चला गया, उनको तो किस बात का होता है कि तो इतना त्यागा पता नहीं किसको दे दिया वो सब। अच्छा इतनी कंपनी थी, ऐसा था, बताओ हम लोग कब से भटक रहे हैं इन चीजों के लिए, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, और इसको मिला तो इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो ऐसी चेतना के लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो जो लोग भक्त हैं वो इस चीज की कदर जानते हैं, और इस प्रकार जो भक्त है वो केवल अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचता है। तो जो लोग सोचते हैं कि देखो इन्होंने जीवन खराब कर दिया, क्या युवावस्था है, ये देश के लिए काम आती, ये सफाई के लिए काम आती या कुछ और काम आती, तो वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, समझ नहीं सकते। इसलिए कुछ लोग बोलते थे कि जो अध्यात्मवादी हैं ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते हैं कि अपना उद्धार हो जाए तो आगे भाड़ में जाए संसार, ठीक है कि नहीं? लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए कुछ लोग इस चेतना से कि ये जो अध्यात्मवादी है क्योंकि ये केवल अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए मैं भी सोचूंगा अपने बारे में, मैं क्या करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, मैं समाज की सेवा करूंगा। लेकिन कम ज्ञान के साथ या बिना ज्ञान के साथ आप कुछ भी काम कीजिए सारा व्यर्थ है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी है, अगर वो व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते तो वृंदावन का बिना छोड़ते, अपना 64, 120, 250, 300 माला रोज करते, भोजन करते, मंदिर में दर्शन करते, आराम से विमान आता बैठ कर चले जाते। अगर ऐसा होता तो आप यहां होते? आप कहां होते? आप अभी अभी घर में होते है ना, कुछ तो कुछ और कार्य कर रहे होते। तो अगर व्यक्तिगत मोक्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसे भक्त जो अपने लिए नहीं जिए पर दुखा दुखी, ये जो परंपरा है, जिस परंपरा में है ब्रह्म गौड़ माधव जिसे हम बोलते हैं ब्रह्माधव गौड़ संप्रदाय, इसमें सारे के सारे भक्त ये हम जिस परंपरा में है, कहते ना प्रभुपाद जी बोलते थे हमें भी नारद जी की तरफ प्रजापति के 10,000 शिष्यों को गए नारद जी, उनको प्रचार किया और 10,000 शिष्यों को क्या बना दिया, उनको बस जीवन का महत्व बताया, भक्ति का महत्व बताया और वो क्या बन गए, सबने सबने सोच लिया विवाह नहीं करेंगे हम तो बस अपना जीवन भक्ति में देंगे। अब 10,000 शिष्य मतलब बच्चों को सीधा ब्रह्मचारी का, अब प्रजापति का काम था प्रजा को आगे बढ़ाना, उन्होंने 10,000 संतानी की कि चलो उनकी संख्या बढ़ेगी संसार चलेगा, उन्होंने 10,000 ब्रह्मचारी बना दी, तो बड़े परेशान बड़े गुस्से, फिर उन्होंने 1,000 वो करे, फिर नाना जी मिल गए उनको और फिर नाना जी ने प्रवचन किया छोटा सा प्रवचन, उस प्रवचन का लाभ क्या हुआ कि सबने कहा हम लग नहीं जाएंगे। फिर तो बड़ा गुस्सा आया प्रजापति को, मैं यहां पर प्रवचन कर रहा हूं और सबको जो है प्रवचन बना रहे, तो उन्होंने कहा कि नाना जी तुम जो है एक जगह टिक ना पाओ कभी, क्योंकि जो व्यक्ति टिक के प्रचार करते हो प्रचार उधर होता था, तुमको लगेगा टिके ही ना, तो नारा जी बड़े खुश अब तो मैं जो है हर जगह जाकर प्रचार करूंगा। तो जहां जहां पर लोग मिलते असुर मिलते कोई ना कोई इस प्रकार के, तो प्रभु नारद जी वहां जाकर प्रचार करते, तो प्रभु महाराज जी कहते थे कि हम लोग भी नारद जी की ही परंपरा में है कि नहीं, और वो जो श्राप उनको मिला है ना कि तुम एक जगह टिक नहीं सकते, प्रभु महाराज जी कहते हमें भी मिला हुआ है, मैं भी एक जगह नहीं टिकता, 11 साल में 14 बार प्रयोगशाला भ्रमण किया हमने और कितने मंदिरों का स्कूलों का और गुरुकुलों का निर्माण किया, और वो जो श्राप मिला प्रभुपाद जी का उसकी वजह से ही क्या है कि हम लोग इतना प्रचार कर पा रहे। तो यहां पर जो लोग ये बोलते हैं कि जो अध्यात्मवादी है व्यक्तिगत मोक्ष के बारे में चिंता करते हैं सोचते हैं, आज ऐसे बोलने वालों से ज्यादा हमारी संख्या है, मतलब समाज के लिए लोगों को तैयार करते हैं कि देश की रक्षा करो या समाज की रक्षा करो या ये करो वो करो, आज उनकी संख्या से ज्यादा जो ये सोचते थे कि व्यक्तिगत मोक्ष के लिए लगे हैं, इस तरह के अध्यात्मवादियों की संख्या ज्यादा है जो कि समाज के लिए वास्तव में सही कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार हम लोगों को इन सारी चीजों से जो कि हमारा ध्यान भटकाती है या हमारा लक्ष्य से हमको दूर करते हैं उससे अलग रहकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जब अभी अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्ड कंपनी के पढ़ा लोगों ने जो मालिक हैं उन्होंने मायापुर चंद्रोदय मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए का दान दिया, तो जब उन्होंने कमिट किया गया दिया था तो सारे रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचे, भारतीय रिपोर्टर्स संकीर्ण मानसिकता वाले जिन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस वो एक मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेके हाथ में कैमरा और माइक लेके हर जगह पहुंच जाते और कोई ज्ञान नहीं जिन्हें, उन्होंने पूछा कि भाई बड़े बड़े जो धनी लोग हैं धनाढ्य लोग हैं कोई गेट हमारे जो बिल गेट्स हैं उन्होंने विंडोज दान की मतलब उन्होंने हॉस्पिटल दान हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल बनाया किसी ने एड्स का हॉस्पिटल बनाया और आपने अपने देश को छोड़कर भारत में वो भी मेन सिटीज को छोड़कर एक गांव में जिसका नाम मायापुर धाम है वहां पर इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए आपने 200 करोड़ रुपए दान कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो ये दान है, ये दान से एक ऐसा मंदिर या ऐसा इंस्टीट्यूशन बन रहा है जहां पर यह शिक्षा दी जाती है कि हम लोगों को किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना, किसी प्रकार का जुआ या झूठ नहीं करना। और इसको ना करने वाला व्यक्ति ना तो एड्स वाले में हॉस्पिटल में जाएगा और ना ही कैंसर वाले में जाएगा। ठीक है, कह रहे मैंने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया है या उसके लिए दान दिया है जहां पर व्यक्ति ये सब चीजें सीखकर उन हॉस्पिटल्स में ले जाएगा। तो जो व्यक्ति भक्त है वो अपने लिए नहीं सोचता, वो पूरे के पूरे समाज के लिए सोचता है। वो अपने मोक्ष की चिंता नहीं करता, वो ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की भक्ति में आ सके और भगवान के धाम जा सके। श्री रघुबा जी इतने सारे 3-4 वैष्णव भजनों को जो है यहां पर कोट कर रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी उन वैष्णव भजन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है दूसरों के विषय में चिंता करनी। अपना तो मोक्ष तैयार ही था लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज चाहते हैं मेरा अकेले का नहीं, इन सब पतित आत्माओं को उद्धार करो। एक वैष्णव भजन में तो बोलते हैं कि आपको हे कृष्ण जो ये पतित पावन शब्द मतलब ये जो नाम मिला है इसको सार्थक कीजिए आप। पतित पावन का मतलब क्या होता है? हाँ, लेकिन पहले हमें पतित तो माना पड़ेगा, तो केवल उनका उद्धार होगा जीवन का जिनको रियलाइजेशन है कि हम पतित हैं और वो प्रयास कर रहे हैं इस पतित से बाहर निकलने का। तो बता रहे हैं हे कृष्ण तुम्हारा नाम जो पतित पावन है इसको सार्थक कीजिए। हो सकता है हमारी कोई योग्यता ना हो, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं हम संसार पर फंसे हुए संसार के, लेकिन आप ये आपकी ड्यूटी है क्या कि आप हम जैसे पतितों को उद्धार दीजिए, तब ही नाम सार्थक हो क्योंकि आप पतित पावन है। दीन बंधु आपको कहते हैं तो हम जैसे दीन लोगों का के मित्र बनिए आप। तो यहां पर अपनी हेल्पलेसनेस शो कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। और रूपा जी कह रहे हैं कि जो बढ़िया है कि व्यक्ति को चाहिए कि भगवान से डायरेक्ट ये ना बोले कि मैं भगवान का भक्त हूं, जैसे कि एक ग्रंथ आदि पुराण में बोला गया है ये मे भक्त जना पार्थ नामे भक्ता शते जना मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता स्ते में भक्त तमाम। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण हे पार्थ जो लोग सीधे मेरे भक्त हैं ये बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूं तो क्या है वस्तुता वे मेरे भक्त नहीं है, वो समझे नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, वो जानते नहीं कि मेरा हृदय कितना बसता है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उनका हृदय निर्मल होता है और निर्मल हृदय में कृष्ण वास करते हैं, इसलिए भक्त को बोला जाता है तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी, अर्थात ऐसे भक्त जिनके हृदय में कृष्ण है जब वो चलते हैं जिन स्थानों पर जाते हैं उसको क्या बना देते हैं तीर्थ बना देते हैं, उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। इसलिए बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी, कई बार बोला जाता है कि लघ मात्र साधु संघ सर्व कहते हैं सर्व सर्वशास्त्र कहते कि अगर लघ मात्र साधु का संग भी कर लिया तो क्या बनेगा परम सिद्धि हो जाएगी। अब लघ मात्र का मतलब है कि एक शंकर चौथा हिस्सा। तो बताया जाता है कि भक्त लोग के हृदय में भगवान रहते हैं और तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि वो तीर्थों को भी अर्थात तीर्थ बना देते हैं, उन स्थानों को तीर्थ बना देते हैं जहां वो जाते हैं। तो जब ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में या उनके आसपास कोई भक्त आता है तो शास्त्र भागवत पुराण के श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ऐसे भक्त के पास आने से ही चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो कितने पापी क्यों ना हो उसके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। क्या करने से? भक्त के केवल नजदीक जाने से। तो ये है भक्तों के संग का प्रभाव। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास हूं, मैं अपने भक्तों की सेवा करना चाहता हूं, मैं उनके चरणों की रज को अपने सर पर लगाता हूं खुद को पवित्र करने का। भगवान तो पवित्र ही, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की रज वो चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किंतु जो मेरे जो लोग मेरे सेवक के सेवक हैं, अर्थात मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, वास्तव में वो मेरे भक्त हैं। समस्या तब होती है जब हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी कहा गया उस व्यक्ति को जो डायरेक्ट भगवान से संबंध बनाना चाहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये लाइन किसी और भक्त ने किसी और विषय में बोली, बट हम यहां सवाल इसे करते हैं कि भाई कई लोग कहते हैं जी बस मेरे तो भगवान है, दूसरा कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता, मेरा तो डायरेक्ट संबंध भगवान से। तो कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर व्यक्ति की ऐसी चेतना होती है। कपिलदेव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की पूजा तक कर रहे हैं, इन विग्रहों को तो भगवान मानते हैं, लेकिन भक्तों को या जो सामने खड़े लोग हैं उनका निरादर करते हैं, उनका अपराध करते हैं या उनको कुछ नहीं मानते हैं, तो भगवान कहते हैं अगर मुझे अग्नि भी दिखा रहे हैं ना, तो समझ लो जो भी जला रहा है मेरे आगे, वो मेरे को अग्नि दिखा रहा है, मतलब मेरे को आग लगा रहा है, मैं उसकी अग्नि दिखाने से जल रहा हूं। क्योंकि ये समझ ही नहीं रहा बात को कि मुझे जिन भक्तों को तुम अवॉइड कर रहे हो, जिनको तुम जिनका निरादर कर रहे हो, वो तो उसके हृदय में साक्षात मैं हूं, है कि नहीं, उनका तुम निरादर कर रहे हो और मेरी तुम पूजा कर रहे हो, तो कैसे चलेगा काम। तो ये बहुत कनिष्ठ मानसिकता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों का महत्व बढ़ा रहे हैं, महत्व है भी और बता भी रहे, क्यों, ताकि लोग ये समझे कि भक्तों का कितना महत्व है। भक्ति बताते हैं भक्तों के बीच में ही जन्म लेती है, यह भक्तों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, उसके लिए स्वयं भगवान ही देंगे, इसलिए भगवान ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां की भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। फिर ऐसे भी भक्त हुए हैं जो दास दासानुदास अर्थात चैतन्य महाप्रभु को कोट कर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना मैं सन्यासी, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं शूद्र, ना मैं ब्राह्मण, इस प्रकार की डेजिग्नेशन से मत बांधो, क्योंकि कई बार इस प्रकार की उपाधियों से बंध कर व्यक्ति उतना ही रह जाता है और दूसरों का भी अपमान या अनादर करना शुरू कर देता है। बाहरी आवरण के लिए, समाज को चलाने के लिए चतुर वर्णा मया सृष्टम, कृष्ण ने कहा है कि मैंने ये चार वर्ण और आश्रम की स्थापना की है, इसमें रहकर दैवी वर्ण आश्रम धर्म बनाइए ना, अर्थात इन आश्रमों में रहकर अपने अपने कर्तव्य को करते हुए आप कृष्ण भक्त बनिए, आप मेरे भक्त बनिए, इसलिए जरूरी है इसका। लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एक आश्रम से या एक वर्ण से जुड़कर अपने को महान समझने लग जाए और दूसरों का निकृष्ट समझने लग जाए, तो ऐसी चेतना नहीं चाहिए। हम किसी भी वर्ण में हैं, किसी भी आश्रम में हैं, महाप्रभु ने हमारा स्वरूप बता दिया है, क्या है, दास दासानुदास, कि हम सब लोग क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण के दासों के भी दासों के भी दास है। ये चेतना तैयार कर रहे, इसलिए बाबा जी कौन कर रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजदृश्य, ज्ञान ही इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ है। कोई यह नहीं बोलता कि मैं बीच में किसी को नहीं मानता, मैं तो डायरेक्ट ब्रह्मा जी से ज्ञान लूंगा, नहीं, जब डायरेक्ट ब्रह्मा जी से दीक्षा लूंगा, नारायण जी से दीक्षा लूंगा, नहीं, ये परंपरा बनाई गई है और इस परंपरा के अंतर्गत ही हम लोगों को ज्ञान त्यागी असंग प्राप्त करना चाहिए। तो एक भक्त और है, मुकुंद माला सूत्र में कुलशेखर जी बोलते हैं, मैं जन्म नाम फलम इदम मधु केट भारे मद प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष तदभृत्य भृत्य परिचारिका भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मानसर लोकनाथ। उन्होंने तो अपने श्लोक में 6 बार भृत्य शब्द को इस्तेमाल कर लिया कि हे भगवान आपका मैं दास बनना चाहता हूं, दास नहीं, मैं आपके दासों के भी दासों का भी दासों का भी दासों का भी दासों का भी दास बनना चाहता हूं। मेरे किसी को यह ना लगे कि महाप्रभु ने कहा दास दासानुदास दूसरे की पोजिशन तक तो ठीक है, उसके बाद जितने बीच में लोग हैं उनको निभाना, ठीक है कृष्ण की बात मान लीजिए, तुमने मेरा अहंकार खत्म कर दिया, चलो आपने समझा दिया कि भक्तों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो जो गुरु है फिर मैं उनके मानूंगा, ठीक है नहीं, चलो गुरु जी बोल रहे हैं भक्तों के दासों के दासों के दास बनना है, तो ठीक है 2-3 स्टेज हो ले लो, चलो गुरु नहीं तो चलो प्रेजेंट मान लूंगा, अब और कोई बीच में आए है ना जी, बस इतना ठीक है। नहीं, यहां पर भगवान के भक्त कह रहे हैं दास दास अनु दास, इतना नहीं, छह सीढ़ी नीचे ले गए और कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान जो समझ गए, जिसकी फिलोसफी क्लियर है और जो सच में भक्त है, जो सच में वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहता है, उसके लिए फिर छह सात सीढ़ी भी नहीं, उसके लिए तो हर व्यक्ति पूजनीय है, उसके लिए तो हर अथॉरिटी क्या है, पालन करने के लिए। ये तो उन लोगों के लिए समस्या है जिन लोगों को लगता है जिनका अहंकार अभी बढ़ा हुआ, जिनको लगता है मैं इसकी क्यों मांगने के बारे बाद में आया था, है ना, ये तो कल मेरे सामने आया था। और इस प्रकार के अहंकार से, इस प्रकार के घमंड से कई कई भक्त लोग अपना पतन करा चुके, कई कई भक्त लोग आज तक नहीं सुधर पाए क्योंकि वो अभी भी अपने ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते। और जबकि ये सबसे बड़ा गुण है किसी भक्त के लिए कि वो अपने ऊपर की अथॉरिटी का आज्ञाओं का पालन करता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सिद्धांत क्लियर है कि मुझे भगवान के धाम जाना है और मुझे भगवान की बात माननी है। फिर वो ये नहीं देखता कि कितने से ऊपर हूं कितना नीचे, उसको तो ये पता चलता है कि ये जो है निर्देश मेरे लिए आया है, मुझे इसका पालन करना है। अगर उन आदेशों में कहीं पर भौतिकता छलक रही है, कहीं पर किसी का अपना पर्सनल काम छलक रहा है, या किस प्रकार जिससे कि आपको लगता है कि मेरी भक्ति खत्म हो रही है या गलत संग हो रहा है, तो तब हमें उससे ऊपर की अथॉरिटी से बात करनी चाहिए या उससे ऊपर। अगर इस प्रकार नहीं है, केवल डिवोशनल सर्विस है और भगवान के भक्तों ने जो कि पूरी परंपरा में आ रहे हैं उन्होंने दिया है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा तो फिर व्यक्ति गुरु को भी नहीं मानेगा, फिर भी गुरु से पता नहीं कहां जाएगा, सीधा कृष्ण से संपर्क करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी भक्तों की संघ का या उनकी आज्ञाओं का पालन करने के महत्व को बता रहे हैं। भक्तिवेदांत ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे भक्तों का कुकुर बना लीजिए। मैं तो कुकुर हूं, कुकुर मतलब होता है कुत्ता। भक्तिवेदांत ठाकुर जी जिनको आप पूजा करते हैं, वो ऐसा बता रहे कि मुझे तो कुत्ते के समान रखिए। और भजन गाया उन्होंने कि मैं तो वैष्णवों के घर पर कुत्ता बनकर दरवाजे में मांग कर रख लीजिए। मुझे क्या होगा कि जैसे मेरा मालिक आएगा तो वैसे तक मुंह हिलाता हुआ जाऊंगा, भागूंगा, उनके पास जाऊंगा, वो बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, वो बोलेंगे इधर आ तो मैं आ जाऊंगा, वो कुछ खाने को देंगे तो खाऊंगा, वो नहीं देंगे तो नहीं खाऊंगा। अब ये कुत्ता, हम लोग इस पशु का कितना इस्तेमाल करते हैं लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? कि जो लोग आहार इतना भय और मैथुन कर रहे हैं तो पशु से तो तुलना करते हैं। अब एक अच्छा भक्त बनना है तो इसी पशु का काम इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? भक्ति रंजन कह रहे हैं कि हमें हर चीज से सीखना चाहिए ना, तो कुत्ते से क्या सीखना चाहिए, ऐसी मानसिकता की अपने मालिक के प्रति कैसे वफादार होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो मैं उसके ऊपर भोंकूंगा, है ना, होता है ना, बचाते हैं किसी घर में जहां लिखा होता है कुत्तों से सावधान, कई घरों में लिखा होता है, कई घरों में कुत्ते होते हैं और कईयों में लिखा होता है लेकिन कुत्ते नहीं। तो भी लिखा होता है, सेल्फ रिलेशन की बात है क्योंकि शायद हो सकता है किसी ने लेक्चर सुन लिया होगा। कहने का क्या मतलब है कि वास्तव में पशु मानसिकता है समाज, लेकिन भक्तिवेद ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसी मानसिकता हमें चाहिए अपने गुरु की सेवा करने के लिए, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी मानसिकता अगर हमारी होगी और जो अध्यात्मवाद है अर्थात जो भक्त लोग हैं, भक्तों का जो समाज है, यहां पर हम लोग अपने उद्धार के लिए नहीं है, अपना उद्धार तो उसके अंदर ऑलरेडी सम्मिलित है। जब भगवान के भक्त और पूरे समाज का उद्धार करने की बात करते हैं, भरलाल महाराज हमारी पूरी की पूरी परंपरा के दूसरों के उद्धार के लिए ही है। आज श्री प्रभुपाद जी का अगर कोई बोला जी नहीं अपने उद्धार के लिए थे खाली, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति जो है जिसके अंदर है वो पूरे समाज का उपर उद्धार करना चाहेगा। और एक व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र, वो उम्र जब लोग इस संसार में भगवान से प्रार्थना करते हैं ले चलो हमें, बस ना खाया जा रहा, ना देखा जा रहा, ना चला जा रहा है, अलग अलग प्रकार के कष्टों से वो
ऐसी उम्र में 70 वर्ष की उम्र में 16-17-18 साल के युवकों युवतियों के साथ शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जैसे देश में वहां प्रचार कर रहे हैं और सफल भी हुए। पूरे संसार में आज एक व्यक्ति की वजह से पूरे संसार में पूरा का पूरा संसार फायदा उठा रहा है। तो ये व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, ये पूरे विश्व का उद्धार कर दिया, पूरे के पूरे विश्व का। आज देश का नेता जब देखता है कि हाँ हमारी गीता हमारा भागवतम की वजह से पूरे संसार में प्रचार हो रहा है और इतना महत्व है इसका, तो विदेशों में जाकर भी देता है उसको, उसके महत्व को जानता है। तो ये व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है। व्यक्तिगत मोक्ष के लिए तो कुछ लोग जो भजन करते हैं और फिर कहीं देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग जिनका भजन में रस है वो लोग गुप्त जगहों पर जाकर भजन करते हैं, लेकिन गोष्ठानंदी है वो लोग भक्तों के संग में पूरे विश्वभर में चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उद्धार हो, जो आनंद जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है वो सबको प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पर लाल महाराज की वह चेतना है, 5 साल की उम्र और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि अब क्योंकि आप दीन बंधु हैं, आप पति पावन है, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। वो स्थिति में नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। उनकी जो स्थिति थी और हमारी जो स्थिति, अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, वैसे सोच रहे थे 2-4 शब्द लिख लिए, कितना कोई व्यक्ति बने नहीं है, वो तो प्रहलाद महाराज से हम यहां के महाराज अपने घर के महाराज हैं, हमारे और उनकी आपस में क्या तुलना करें। अगर तो हम देख रहे हैं प्रहलाद और अपने को कंपेयर करने की कोशिश करें, प्रहलाद महाराज के जो पिता थे वो कौन थे, हिरण्यकश्यपु एक असुर, और अपनी तुलना करें हमारी स्थिति ऐसी नहीं है ना कि हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। कि दूसरा उनकी माता कयाधु, वहां से भी ज्ञान मिला, हमारी माता से भी हमें ज्ञान मिला है थोड़ा बहुत, ठीक है, और उन्होंने माता के गर्भ में ज्ञान लिया। हम अब कह सकते हैं गर्भ में लिया तो याद ही नहीं रहता, वैसे तो ज्यादातर माता जानती है, जब माता जब शिशु गर्भ में होता है तो माता खूब कथा सुनती है, खूब पढ़ती है ना, इतना संस्कार भी देश बचे तो हमने भी सुना है, लेकिन हमें कुछ याद नहीं। वो 5 साल की उम्र में उन्हें मतलब सर्व प्राप्त हुआ जब माता के गर्भ में, किसका, नारद मुनि जी को। और हम लोगों के पास भी आज हम जहां जिस स्थिति में हमें किनका प्राप्त हो रहा है, नारद जी का भी सर्व प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवतम के द्वारा और सारे आचार्यों का, पूरी गुरु परंपरा का, महाप्रभु की शिक्षाओं का, शिला प्रभुपाद जी का कितना सर्व प्राप्त हो रहा है। वो अकेले थे, स्कूल में थे, सारे के सारे नेगेटिविटी थी, पर हमारे साथ क्या है, हम जो मर्जी चाहे मंदिर आ जाते, उनके पास कोई डिग्री विषय में ध्यान लगाने के लिए भगवान के विग्रह या मंदिर नहीं था, सारे के सारे लोग अध्यक्ष थे, हमारे यहां सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, हम यहां बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भागवत मोहन कर सकते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे पास अगर हम अपनी पोजीशन देखें उस तरह से तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान को इतनी कम उम्र में प्रसन्न कर पाए अपनी शरणागति के लक्षण के द्वारा। तो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में हरि भक्ति विलास में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें शरणागति के विषय में बताते हैं, उसका नाम है श्लोक है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन रक्षती विश्वास वर्णन तथा आत्मक्षेप कारण्य शतविधा शरणागति। 6 लक्षण बताए शरणागति के और ये सारे के सारे लक्षण प्रहलाद महाराज के थे, के अंदर थे। क्या थे वो लक्षण, कि वो अनुकूल चीजों को स्वीकार करते थे जो भगवान की भक्ति के लिए था। तो जब समय मिलता था तो प्रचार करने लगते थे, जब समय मिलता था तो स्मरण करने लगते थे और असत संग से दूर रहते थे। प्रतिकूल वर्जन जो भक्ति के विपरीत चीजें थी उनका त्याग करते थे, जैसे आज के समय प्रभाव चलचित्र इत्यादि नहीं देखते, तो जो सिनेमा इत्यादि की चीजें हैं तब होती भी रहती और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे, जब बेशक उस प्रकार के नेगेटिव एटमोस्फेयर में थे। रक्षा भी इतनी विश्वास, उनका पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण मेरी हर अवस्था का रक्षा करेंगे, कहीं पर भी उन्होंने कहीं ऐसा नहीं दिखाया अपने आचरण के द्वारा कि नहीं वो अभी उनका थोड़ा सा फेथ शेक हो गया, क्योंकि बार बार मार रहे हैं उनके माता पिता ना, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कहीं नहीं हुआ उनका, है ना। उसके बाद गोप तृप्त वर्णन था, हर समय में यह था कि भगवान मेरी किसी के परिणाम में संरक्षण प्रदान करेंगे हर समय। आत्मनिवेदनम अर्थात फिर क्या था, पूरी तरह समर्पित थे भगवान, परसेंटेज अगर देखे तो 100%। और कार्पण्य अर्थात दीनता भी थी, तो ये सारे लक्षण उनके अंदर थे। कहीं पर ऐसा नहीं दिखा कि नहीं जी मैं तो देखो तुमने मुझे मारने की कोशिश करी मैं बच गया ना, अब मैं मारना बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर दोबारा मारी फिर बच गए, तो कहीं ऐसा घमंड कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, देखो मेरे को रक्षा हो रही है। दीनता का भाव सदैव। और हमारी स्थिति में अगर हमने देखें छह चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं शरणागति के जो लक्षण है, हमें अपनी तुलना करनी चाहिए इससे, अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कितनी अनुकूल चीजों को स्वीकार करता हूं, मैं कितनी प्रतिकूल चीजों के परे रहता हूं, मेरा कितना विश्वास है भगवान पर कि मेरी रक्षा करेंगे, मेरा सदगुरु संरक्षण प्रदान करेंगे, मेरा कितना समर्पण है भगवान के प्रति, मैं कितना दीनहीन समझता हूं अपने आप को। तो इस प्रकार के गुणों से हम अभी दूर है। तो जब इस प्रकार के गुणों को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो ये अपने आप सारे अंदर गुण आ जाएंगे कि हम लोगों को पर दुखा दुखी दूसरों के दुख से भी दुख होना चाहिए। और दुखी होने का मतलब ये नहीं कि आप फिर उनकी सेवा करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वहीं चले जाएं, जैसे जब है महाराज वो विरन है, कहां जाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, कोई काट ना ले, कुछ ये ना कर दे और फिर पता हो गया। पर दुखा दुखी का मतलब है कि जो लोग कष्ट में है, दुखी है, परेशान है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अभी अपने पिता परम पिता तक पहुंचने की, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी देना, ना कि उनके साथ मिलकर बैठकर खाना और फिर घुमाना, फिर चलो तुम फिल्म जा रहे हो, चलो मैं भी चल लेता हूं, है ना। ये पर दुखा दुखी नहीं, पर दुखा दुखी का मतलब है कि ऐसी जीवात्माओं के विषय में भी सोचना कि उन्हें किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शरण बनाए। ये है हमें पता है कि भगवान की शरण में आने से तभी वो पूर्ण सुखी हो सकता है, पूर्ण आनंद में आ सकता है, या इस संसार से जन्म मृत्यु जरा गया भी के चक्र से बाहर निकल सकता है। तो ये है दुखा दुखी का मतलब। तो इस प्रकार के वैष्णवों का के विषय में सुनने से या संग करने से और इस प्रकार की चेतना बनाना कि हम लोग दासों के भी दास रहकर शिक्षाओं का पालन करें, आचरण का पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारा भी उद्धार होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय ज्यादा हो चुका है, फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछते हैं। हाँ जी कैसे समझे लव मात्र साधन, उन्होंने बताया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जिनके हृदय में सदैव कृष्ण वास करते हैं, तो उनके नजदीक जाने से भी हमारा शुद्धिकरण होता है, उनका स्पिरिचुअल ऑरा होता है। और फिर अब ये सोचे कि लव मात्र से ही होगा तो मैं बस साधु के पास से निकल जाऊं बस, है ना, तो हो जाएगा, निश्चित रूप से पवित्र तो होंगे, लेकिन शास्त्र में और भी चीजें बोली गई, तो संग करना, मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना, तो इसी समय तुष्टि और आनंद प्राप्त होगा, फिर और विषय और भगवान के सुनना, तो इससे हम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि भगवान की भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि एक ऐसा लेवल है कि वहां पहुंच के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे आप खूब पढ़े और किसी का सीए फाइनल ही हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना, अब तो शुरू है। उसी प्रकार भक्ति में भी जब आगे बढ़ता है उसको लगता है मेरे अंदर गुण आ गया, तो वो आनंद लेता है, वो हमेशा भगवान के गुणों का चर्चा करना चाहता है, भगवान के विषय में सुनना चाहता है, चैंटिंग करना चाहता है, उनका गुणगान करता रहना चाहता है। ऐसा नहीं खत्म हो गया अब तो भग गया जी, भक्त बन गया, तो दीक्षा हो गया, अब क्या करूं, ऐसा से नहीं। तो भक्तों का सबका मतलब है कि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन बढ़ जाता है, उसमें आनंद आना शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप आ सकते हैं अगर किसी प्रश्न। श्री प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की गीता योग के माध्यम से।